نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا بہت سارے جنوں اور انسانوں کو. کیا علامت ہے ان کی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے؟ فرمایا: لہم قلوب لا يفقهون بها. ان کے دل تو ہیں لیکن اس دل سے وہ غور و فکر کا کام نہیں کرتے. یعنی دل میں اور اتنے خیالات اور اتنے دکھ اور غم خوشیاں ڈالے ہوئے کہ غور و فکر کی نوبت ہی نہیں آتی. اور دوسری: ولہم آیان لا یبصرون بها. اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی حق کو نہیں دیکھتے، صحیح چیز نہیں دیکھتے. آنکھیں ویسے تو بہت کچھ دیکھتی ہیں لیکن اللہ کی فرما برداری والی چیزیں نہیں دیکھتی، عبرت کے ساتھ نہیں دیکھتے. تیسری ان کی علامت: وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان ہیں لیکن یہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہی بات، حق بات نہیں سنتے. ویسے تو بہت کچھ سنتے ہیں، من پسند اور لوگوں کی پسند کی چیزیں تو بہت ساری سنتے ہیں، لیکن جو سننے کا وقت آئے گا یا جس سننے کا کہا گیا وہ نہیں سنتے. چوتھی ان کی صفت کیا ہے؟ اولائک الانام. یہ چوپایوں کی طرح، دیر لائک کیٹلس، یعنی یہ جانور ہیں جس کو اپنی زبان میں ہم کہیں، بلکہ بل ہم ادل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. کیسے؟ کہ جانور اپنے مالک کا بڑا مخلص ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، مالک اس کو جو کھانے کو دے کھا لیتا ہے، جو اس سے توقع رکھتا ہے وہ اس توقع پہ پورا اترتا ہے. لیکن یہ انسان اتنے زیادہ نہ سمجھ ہو چکے ہیں کہ اپنے مالک یعنی رب کی بات نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. جو رب کہتا ہے کرو وہ نہیں کرتے، بلکہ اسی کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں. یعنی جانور کم از کم شرک تو نہیں کرتا، جانور کسی قبر پہ جا کے ماتھا تو نہیں ٹیکتا، لیکن ان کا حال اس سے اپوزٹ ہے. اور سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ اولائک ہم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں. یعنی یہ ساری حالت انسان کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. آنکھیں کھولنے والی آیت ہے، صرف ایک آیت ہے، لیکن اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت زیادہ فکر اور سوچ کا مقام ہے. اور وہ کیا؟ کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھے، جو کہا گیا وہ نہ کرے، جس سے روکا گیا اس سے نہ رکے، تو اس کی کیفیت جانوروں سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور وجہ پیچھے غفلت ہے. تھوڑی سی بات ہم اگر غفلت پہ کریں تو آپ دیکھیے کہ اپنی سینس میں ہم سمجھتے ہیں کہ غفلت کس کو کہتے ہیں. مثلا اگر آپ کو آج یہاں آنا تھا، آپ بھول جاتے، کیئر نہ کرتے، یا آپ نے کسی سے کہا کہ آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانا ہے، گاڑی لے کے آئیے گا، تیار رہیے گا، بچوں سے کہا، بیٹی سے کہا ساتھ چلنا، اور عین وقت پہ وہ شو یہ کرے کہ اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے یہ کیا کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے، میں تمہیں کہہ چکی، میں نے تیاری کر لی اور اب آپ آئی نہیں. گھر والے کو ہم کہہ دیں ہم آئیں گے بعد میں، کہ وہ اچھا یاد ہی نہیں رہا. تو غفلت ہم انسانی معاملات میں بھی پسند نہیں کرتے. آپ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں 5 بجے کہ وہ آئیں گے اور آج آپ کو شاپنگ پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ صبح جاتے ہوئے وہ آپ سے وعدہ کر گئے، اور بعد میں 5 بجے آپ فون کریں، وہ کہ اچھا ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں. ہمیں اور غصہ آئے گا کہ اچھا جی آپ نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں سمجھی. ہماری بچی کی شادی ہو، ہم بھاگ بھاگ کے تیاریاں کر رہے ہیں، اور جن کو ہم نے بلایا پتہ چلے مہمان آ ہی نہیں رہے، فون کریں کہ اچھا آج شادی تھی، اچھا ہم نے تو یاد ہی نہیں رکھا، بھول گئے، میرا علم سر پٹک دیں گے. تو ہم انسانی معاملات میں غفلت کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ کی ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کے معاملے میں ہمارا آج کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت. इकतारबा उर्दू में भी हम बोलते हैं, काराबा कुर्ब करीब, कराबतदारी करीबी रिश्तेदार, ये एक ही लफ्ज़ है। लिन नास लोगों के लिए, नास इंसान, इसी से मिलता हुआ लफ्ज़ है। हिसाब हम हिसाब का लफ्ज़ उर्दू में भी आता है। हाँ, इकतारबा लिन नास हिसाब हम, जहाँ तक तो बात है। वहम फी गफलत मोरिदोन, लेकिन इसके बावजूद वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। यहाँ भी देखिए कि लफ्ज़ गफलत आ गया। जब किसी के सामने ये आयत आए और वो सोच में पड़ जाए कि क्या मैं अपनी इस ज़िंदगी में आकर जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था उसको भूल तो नहीं गया। एक तरह वाले नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलत मोरिदून, हम सब अपने हिसाब की अगर फिक्र लगा लें तो हकीकत यह कि गफलत चल जाती है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में पड़े हुए हैं। इस बात को अगर आप सुने और फिर इस पे गौर व फिक्र करें तो सवाल पैदा होता है कि किस हिसाब का वक्त करीब आ गया। तो हमारी मौत का वक्त करीब आ गया। ओवरऑल देखें तो दुनिया के ख़त्म होने का वक्त भी करीब आ गया। अल्लाह के नबी सल्लम आज से 1400 साल पहले दुनिया में थे और उस वक्त आपने फरमाया कि लोगों जो ज़माने का हिस्सा गुजर चुका है उसकी, और अब जो क़यामत तक का हिस्सा पीछे बाकी है उसकी निस्बत ऐसे है कि जैसे कपड़े को फाड़ा जाए, सारा कपड़ा फट गया, कन्नी का एक तार बच गया और एक झटके से उसको भी फाड़ दिया जाएगा। 1400 साल पहले ये कहा तो आज क़यामत कितनी करीब है। लोग कहेंगे अच्छा जी ये तो 2012 में आनी थी, आई तो कोई नहीं है। कोई नहीं बता सकता कब आएगी कब नहीं आएगी, ये अल्लाह को बताए। अयान मुरसाहा फी मानदा मिन ज़िक्राहा इला रब्बी हमुंतहाहा, इंसान दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा गया और हम इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया की चीज़ों में इतने मगन हो गए कि हमें ये याद भी नहीं रहा कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। आप उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसको माँ कहे कि जाओ बेटा वो दूसरे कमरे में से तकिया लेकर आओ। माँ ने उसको एक मकसद के साथ उस कमरे में भेजा और वो वहाँ जाए और पास ही पड़ी हुई किसी टॉफ़ी के रैपर को देखकर या कुछ खिलौनों को देखकर तकिया लाना भूल जाए और वहीं खेलने लग जाए। फिर माँ उसको क्या आवाज़ लगाएगी कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा था, तुम्हें कुछ करने को भेजा था। बाज़ दफ़ा जवान बच्चों को सिर्फ इसलिए माँ से डांट पड़ती हैं, वो कहती हैं जाओ दूध ले आओ दही ले आओ, पता चला वो दोस्तों के साथ कहीं और निकल गए। हम सबको ये बात दूसरों के लिए समझ आती है कि जब किसी काम का मकसद भूला जाता है, जिस वजह से वो बंदा दुनिया में आया होता है उसको नहीं करेगा तो वो चीज़ हासिल नहीं कर सकेगा जो करनी थी। लेकिन अगर देखें तो प्रैक्टिकली क्या हम में से अक्सरियत का ये हाल नहीं है? अभी रमज़ान गुज़रा माशाल्लाह, चंद दिनों पहले हम एक इतने खूबसूरत महीने में थे कि जहाँ आप देखिए कि एक एक घड़ी कितनी कीमती थी, एक एक फ़र्ज सुन्नत नफिल कीमती हो चुका था। फिर लैलतुल कदर की घड़ियाँ गुजरी, आप सबको मौका मिला होगा उन रातों की इबादत का। आपको पता है कि लैलतुल कदर को अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर कहा। अगर आप एक मिनट काउंट करें ना ताक रातों का एक मिनट, तो वो आम दिनों के 3 दिनों के बराबर बनता है इस हिसाब से। अब बताइए क्या हम अपना एक मिनट भी ज़ाया कर सकते थे? अगर हमने उन रातों की कदर नहीं पहचानी, अगर हमने उन रातों को कदर से नहीं देखा तो हो सकता है कि हम खाली दामन रह गए। लेकिन हर साल रमज़ान का महीना क्या करने आता है कि हमें वो भूला हुआ सबक याद आ जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान में हमारे पास बहुत वक्त होता है, हालांकि आप देखिए कि हम खाते भी बहुत हैं पीते भी बहुत हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसे लगता है कि टाइम थोड़े से जमा कर लिए जाते हैं, दो खानों को एक साथ कर लिया जाता है। ऐसे ही है ना, शाम की चाय और डिनर को इकट्ठा करके इफ्तारी में कर लेते हैं और इसी तरह नाश्ता और दोपहर के खाने को हम सहरी में बदल लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कितना ज़्यादा वक्त मिलता है। आज वो काम क्यों नहीं हो पा रहे जो रमज़ान में करती थी? सवाल ये है खुद से, कितने नेकियों के इरादे किए रमज़ान में, इस साल ये करूँगी ऐसे बन जाऊँगी। और ख़ास तौर पर अगर आपको इत्तेफ़ाक़ हुआ दौरे कुरान अटेंड करने का, पूरे कुरान को अगर आपने उसके खालिस तर्जमे के साथ समझा थोड़ी सी वजाहत से, तो मुझे यकीन है कि उसके दौरान दिल में बहुत सारी नीयतें इंसान करता है। अच्छा ये कर लूँगी, अच्छा वो कर लूँगी, अच्छा ये होगा, अब बस मैंने बदल जाना है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो अपनी चीज़ों के ऊपर नज़र डालते रहना कि कहीं हम फिर दोबारा उसी जगह पर तो नहीं चल पड़े। एक हफ्ते के अंदर अगर हम गंदे होने शुरू हो गए तो फिर अभी तो पीछे बहुत महीने पड़े हैं, अगले रमजान तक फिर हम मेले ना हो जाए। अब देखिए कितना हमने तौबा इस्तग़फ़ार की, कितना रोए धोए, सहरियों में जागे, इतने मुश्किल रोजे रखे जो हमें मुश्किल भी लगे होंगे, लेकिन क्या हम ये चाहेंगे कि इसके बाद हम बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएं जैसे के पहले थे। जब इंसान शावर लेता है तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है ना, फिर उसको वो गंदगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हम गंदे होने लग जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक हफ्ते में हम केयरलेस हो गए, हम सब खुद से पूछे कि मैंने ईद कैसी गुजारी। क्या रमज़ान के ख़त्म होने से लेके आज तकरीबन एक हफ्ता गुजरने के बाद इन 7 दिनों में मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें तो नहीं आ गई जो रमज़ान में गुजरी हुई थी। आप इसको एक और एंगल से भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यौमुल ईद जो है ना, उसको हदीस में यौमुल जायज़ा भी कहा गया है, और जायज़ा का मानी इनाम जायज़ से जजा से भी है, और जायज़ा लेने का मानी अपना तजज़िया करना भी है, कि तुम अपना तजज़िया करो कि तुमने पिछले दिनों में जो नेकियों की नीयत की थी उसमें क्या किया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बंदा बहुत बीमार होता है ना, फिर उसको हॉस्पिटल में रखते हैं लोग, फिर उसकी रिहैबिलिटेशन होती है, उसको चेक करते हैं, कहते हैं नहीं अभी इसको एक हफ्ता हॉस्पिटल में छोड़ दो, हम ऑब्जर्व करेंगे, मशीनों में रखेंगे, इसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, इसकी शुगर चेक करेंगे, इसकी ब्रेन की सारी हरकत चेक करेंगे कि पता चल जाए कि ये अब नॉर्मल सेहत पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल यही है जायज़ा लेना। जब हम अपना जायज़ा खुद लेंगे तो हमें अच्छी तरह से ये समझ आने लगेगा कि हम रमज़ान के बाद अब जिस तरफ चल पड़े हैं, क्या वो सेहत है या वो बीमारी है। क्या हमने रमज़ान से वक्त की पाबंदी सीखी? क्या रमज़ान ने हमें सब्र दिया? क्या रमज़ान ने हमें वक्त का पाबंद किया? टाइम टेबल कैसे फॉलो होता है? 1 मिनट, आप देखिए कि रमज़ान में हम रोज़ा 1 मिनट आगे पीछे होने में ना शोर मचा देते हैं, शोर मच जाता है, उसने खोल लिया भी नहीं, टाइम हुआ भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठहर जाओ, मैं इस नेट से चेक करती हूँ, मैं पीस टीवी से चेक करती हूँ, मैं आईफोन, जितने गैजेट हो गए उतने मसले बन गए, सिर्फ 1 मिनट इधर से उधर हम शोर मचा देते हैं। इसी तरह सहरी में किसी को खाता पीता देखे तो हम उस वक्त भी कुछ इसी किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद क्या होता है? वहाँ सिर्फ एक खजूर खाने की बात थी ना, यहाँ हम अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ कई काम अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं और उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हम सोचते भी नहीं हैं। वजह क्या कि हम रमज़ान को बस रमज़ान लेते हैं। बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इबादत करना पसंद करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि चलो जी अब आ गया ना तो इसमें खूब नेकियां कर लो, क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर हमने और बहुत कुछ करना है, अपनी मर्ज़ी का करना है। मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखें, हम सब की ज़िंदगी में ये मौके जो बार बार आते हैं ना, ये हम सबको एक सोच देते हैं कि तुम इस वक्त इस दुनिया में हो और फिर तुम नहीं रहोगे। मुझे इस रमज़ान ने क्या दिया, मैंने इससे क्या लिया? कुछ वादे कुछ गोल थे तो मैं उसकी तरफ कहाँ हूँ। बस आप देखिए कि मेरी उम्मीद है, हो सकता है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है आप सबके हिसाब से, लेकिन हम सब ने कसरत से कुरान पढ़ा, 30 पारे पढ़े। मेरा ख्याल है कि आप में से ऐसी सिस्टर्स बहुत सारी होंगी जिन्होंने कम से कम एक दफ़ा कुरान पाक ज़रूर पढ़ा, ऐसे ही है ना। सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास 114 सूरतें, 6,666 आयतें, 1,000 हुक्म, 1,000 बातों से रोका गया, 250 यानी 250 किस्से कहानियाँ मिसालें, यानी कुरान में एक ख़जाना है। मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने जो एक पूरा कुरान पढ़ा, मुझे उसने अपने अमल के लिए क्या दिया? इन 1,000 हुक्मों से मैं कितने मान रही हूँ, कितनों से रुकती हूँ, किस चीज़ के ऊपर मेरी तवज्जो बढ़ती है, किस पे नहीं बढ़ती? ऐसे लगता है कि बाज़ दफ़ा हम सिर्फ़ एक रस्म के तौर पर या एक मशीन के तौर पर एक काम नेकी का करते हैं और दैट्स इट, चलो जी हो गई नेकी ख़त्म, अब अपनी ज़िंदगी में चलते हैं। ऐसे लगता है कि जो दो मुख्तलिफ किस्म की दीवारें हमारी ज़िंदगी में खिंची हुई हैं, एक दीन के नाम पे, एक दुनिया के नाम पे। हालांकि हम सब के दुनिया में भेजे जाने का मकसद बहुत बड़ा था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई, हम सब ये किस्सा जानते हैं, शुरू से सुनते आते हैं और बड़े होने तक हमें ज़ुबानी याद हो चुका होता है कि दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں انسان کو دنیا میں ایک خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. پھر سب کے سامنے سجدہ کرایا. پھر آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ اب تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. کلو وشربو کھاؤ پیو جو مرضی لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. یہ وہ سٹوری ہے جو ہم سب کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام کو وہ جنت کیوں دکھائی گئی؟ اس کا جواب میں آپ سب سے پوچھتی ہوں. آپ کبھی بازار جائیں اور کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھ کے آ جائیں جو اس وقت آپ خرید نہیں سکتی, پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز دماغ پہ چھائی رہتی ہے نا. پھر کوشش, پھر میاں کو منانا, پھر گھر میں ماں باپ کو کچھ کر جوڑ توڑ کر کے کہ اب مجھے وہ چیز لینی ہے, ٹھیک ہے. اور جو بازار نہیں جاتا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں بازار میں کیا, مطمئن ہے. اسی لیے بازار سے آ کے سر میں جو درد ہوتی ہے عورتوں کو, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لے بھی آتے ہیں اور بہت ساری پسند کر کے چھوڑ آتے ہیں جو نہیں لائے ہوتے ہیں. تو جس طرح کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں نا, تو بعد میں پھر اس کے خیالات میں کھوئے رہتے ہیں, اس کی قیمت جمع کرتے ہیں, اس کے خواب دیکھتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو وہ جنت اس لیے دکھائی تھی, اور ان دونوں کے ناطے ہم سب نے بھی دیکھی ہوئی ہے. ہم آدم کے پشت سے پیدا کیے گئے, بی بی حوا اور آدم ہمارے ماں اور باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی فطرت میں اس جنت کی طلب ڈال دی تھی. ہماری روحیں بھوکی ہیں اس چیز کی کہ ان کو وہ جنت ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو مجھے ہی رب مانو گے اور میرے حکموں پہ چلو گے اور جو میں کہوں گا وہ کر کے تم آ جاؤ گے. تو جنت اس لیے دکھائی گئی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس جنت کی طلب پیدا ہو, ہم اس کے لیے کوششیں کریں, خواہش رکھیں. لیکن ہم اس دنیا کو جنت بنانے لگ جاتے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, میں تو بالکل ایسے دل چاہتا ہے کہ بس ون آن ون بیس پہ بات کروں, میں اپنی زندگی پہ بات کروں. آپ سب اپنے پہ سوچیے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم مصروفیات کو مقصد سمجھنے لگتے ہیں. یعنی اگر میں باری باری آپ سے پوچھوں تو آپ میں سے کوئی کہے گا جی بچے پالنا, بچوں کو اسکول بھیجنا, گھر صاف کرنا, کھانا پکانا, صفائی کرنا, یہ مقصد نہیں ہے, یہ مصروفیت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف مصروفیات دی ہوئی ہیں, اور زندگی کے مختلف ادوار میں یہ بدلتی رہتی ہیں. جیسے ینگ بچیاں شادی سے پہلے گھر کے کام عموماً نہیں کرتی, ماں باپ کر دیتے ہیں, ماں کر دیتی ہے, بھابھیاں کر دیتی ہیں. شادی ہوتی ہے تو وہ مصروف ہو جاتی ہیں. تو مقصد تو نہیں بدلتا, یہ سوچ, یہ صرف ایک طریقہ کار بدلتا ہے. مقصد کوئی بہت بڑا تھا, اور وہ مقصد کیا تھا؟ کل نہ بھی تم انہا جمیا. آدم اور حوا کو جب زمین میں بھیجا تو کہا اب تم دونوں یا تم سب اس جنت سے زمین پہ نکلو. فعم یاتی ین کو منی ہودن, پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فمن تبی یا خدا یا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پھر جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی اس کو پھر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. کیا سمجھ آیا؟ کہ ہم سب اس کھوئی ہوئی جنت کو پانے کے لیے بھیجے گئے. اب دنیا میں سوال پیدا ہوتا ہے آگے جنت لینی ہے, کون ہے جو جنت نہیں لینا چاہتا؟ آپ کسی شرابی سے بھی پوچھے ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو پیراڈائز, کہے گا یس. مجنو دیوانے سے پوچھ لیے کیا تمہیں جنت چاہیے, وہ کہے گا یس. سب کو چاہیے, لیکن جنت میں جانے کا راستہ کیسا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کرتی ہوں, آپ بالکل اپنے امیجینیشن کو ساتھ لے کے چلیں, بعد میں مجھے جواب دیجیے گا. آپ دیکھیے کہ آپ کو کہیں جانا ہے, آپ ڈرائیو کرتی ہیں, بہت ضروری جگہ ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے, واٹس ایور جو بھی ہے. آپ کہتے ہیں اچھا کدھر جانا ہے, وہ کہتے ہیں ادھر سے نارتھ سائڈ پہ جاؤ. کہتے ہیں ہاں ہاں وہ ہائی وے مجھے یاد آ گیا, ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے راستہ, میں چلتی ہوں. اب جو ہی آپ ایک فل سپیڈ سے ہائی وے پہ پہنچی, دور سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ کی روڈ جو ہے نا وہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے, سیدھی نہیں رہی, یا رائٹ یا لیفٹ. تو ایک دم آپ کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کدھر مڑنا ہے. آپ اسیس کرتے ہیں نا کہ رائٹ سائڈ پہ مڑوں گی کہ لیفٹ پہ مڑوں گی. پھر آپ ڈاؤٹ میں ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں دیکھتی ہوں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ جو روڈ ہے اس کے اوپر کچھ سائن بورڈس لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو سڑک بہت ٹوٹی ہوئی ہے, تنگ روڈ ہے, راستہ بڑا خراب ہے, پتھریلی زمین ہے, ہلی ہے, ساتھ کھائیاں بھی ہیں, خطرہ بھی بہت ہے. یعنی جو بھی راستے کے اعتبار سے خراب چیز ہوگی وہ ادھر لکھی ہوئی ہے. लेकिन एंड ऑफ द रोड वही स्टेशन है जहां आपको जरूर पहुंचना है, और वन टाइम ऑप्शन है, बस पहुंचना है, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते, पलट भी नहीं सकते। आप कहते हैं राइट, है तो रास्ता यही है, लेकिन रास्ता बड़ा ख़राब है, टूटा फूटा है, लो मैं देखूँ कोई और भी रास्ता है। अब आप दूसरी साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे, उधर आप देखते हैं तो वहाँ भी गवर्नमेंट का एक साइन लगा हुआ है। सोच रहे हैं साथ साथ, उधर क्या लिखा हुआ है? रास्ता बड़ा खूबसूरत है, डबल रोड, कारपेटेड, दोनों तरफ सायादार दरख्त भी, थोड़े थोड़े मील पे, चंद माइल्स पे पिकनिक स्पॉट भी है, पानी का इंतज़ाम है, एंटरटेनमेंट है, सोने का इंतज़ाम है। खैर, खूबी जो सफ़र में ज़रूरी होती है वो मौजूद है, लेकिन लिखा हुआ है कि जहाँ ये रोड ख़त्म होगी वहाँ एक शेर है, एक जंगल है, और जो गाड़ी उधर आती है वो शेर उसको खा जाता है, या डाकुओं का एक ग्रोह है, सांपों की कोई बस्ती है। अब आप मुझे बताइए कि आप किधर मुड़ेंगे, कितने लोग हैं जो राइट साइड मुड़ेंगे और कितने हैं जो लेफ्ट पे मुड़ेंगे। देखिए, इस ड्राइंग रूम में बैठ के तो हम सब यही कह रहे हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? ये जो राइट साइड है ना, ये सबीलुल जन्ना है, सिराते मुस्तकीम है, रोड टू जन्ना, रोड टू सक्सेस, और लेफ्ट साइड जो ना, ये रोड टू हेल है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारह, जन्नत नफ्स पे बोझल पड़ने वाली चीज़ों से ढांक दी गई, यानी सेल्फ कंट्रोल, हर वो चीज़ जिसमें अपने नफ्स को ऐसे पकड़ना पड़े ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आप देखिए कि आप इमेजिनेशन में लाएं, इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे चलें, ऊपर जा रहे हैं आप, हिली स्टेशन है, आपको जाना है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए होती है ना, फोर व्हील कार, मोर लाइकली जीप। फिर आप देखते हैं कि जो ड्राइवर्स हिली स्टेशंस पे गाड़ी चलाते हैं वो कितने केयरफुल होते हैं, बिल्कुल इधर उधर देख नहीं सकते, अक्सर रोड यूं चल रही होती है, हल्की सी उसकी गलती गाड़ी को एक खाई में गिरा सकती है, पीछे वाले बातें करें, खाएं, इधर देखो ये सीन अच्छा, वो सीन अच्छा, लेकिन ड्राइवर क्या कहता है? कहते मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करो, उसकी पूरी नज़र मंजिल पे होती है, थोड़ी सी उसकी गलती जो है ना उसको नीचे गिराएगी, गाड़ी का जोर भी बहुत लगता है, पेट्रोल भी बहुत लगता है। इसके बरक्स जब ऊपर हिल से आप नीचे आते हैं, यानी जब आप मरी से वापस पिंडी की तरफ आए, मिसाल है, तो आप क्या करते हैं? मैंने खुद देखा हुआ ड्राइवर्स को कि नीचे आने के लिए बाज़ दफ़ा गाड़ी को न्यूट्रल में कर देते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, और गाड़ी को बस न्यूट्रल में करके स्टेयरिंग पे कंट्रोल करते हैं, और यूं गाड़ी खुद ब खुद घूमती घूमती नीचे आ जाती है। गलती यहाँ भी लगे तो खाई में गिरेगी, लेकिन ऊपर चढ़ने की निस्बत नीचे उतरना आसान है। ऊपर चढ़ना क्या है? जन्नत। अगर हम जन्नत चाहते हैं, वाकई चाहते हैं, तो ज़िंदगी में ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, फोकस्ड, वक्त का ख्याल, नज़र पे, एक एक लफ्ज़ पे, बोल पे, एक एक आंख के देखे पे काबू पाना पड़ेगा कि कहीं मेरी आंख कोई गलत चीज़ देखे और मैं जन्नत की रोड से गिर के किसी खाई में ना गिर जाऊँ, मेरे कान गलत सुनने में लग गए तो कहीं मैं उस कानों के गलत सुनने की वजह से जन्नत से गिर ना जाऊँ। हर वक्त कॉन्शियस, केयरफुल, मुत्तकी जो होता है ये बहुत केयरफुल बंदा होता है, बहुत स्ट्रिंजी होता है, बहुत बखील होता है, कंजूस, किस मामले में? वक्त के मामले में। जैसे पैसे वाले को अपना पैसा बड़ा प्यारा होता है ना, एक दमड़ी भी चली जाए तो जान पे बनती है, मुत्तकी की सबसे कीमती मता इस दुनिया में रहते हुए उसका वक्त है, क्योंकि उसको पता है कि ये वक्त अगर अल्लाह की याद से गफलत में गुजर गया तो मैं कल इसका सही फायदा नहीं उठा सकूंगा। वो अपने माल के बारे में बहुत स्टिंजी होता है, ऐसे ही नहीं फेंकता रहता कि जिधर दिल चाह इस्तेमाल कर दिया, जायज़ पे भी नाजायज़ पे भी, हलाल पे भी हराम पे भी, उसका खाना कोई भी खा जाए, उसको परवाना, ऐसा नहीं होता। यानी मुत्तकी कौन है? गाफिल का ऑपोजिट, केयरफुल, बीइंग केयरफुल, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और इसके बरक्स जहन्नमी कौन है? सिर्फ एक काम कर दें, ब्रेक से पाँव उठा लें, सीधी गाड़ी जाके जहन्नम की वादियों में गिरेगी। और कुछ लोग पता क्या सोचे बैठे हैं आज हम जैसे, कि बस नहीं 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 कुछ नहीं, ए छोड़े, डोंट बी टू मच, बस कर ली ना रमज़ान में नेकियां, और क्या करें, आगे देखेंगे। नहीं नहीं अल्लाह इज़ नॉट सो मीन, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की गालियां देते हैं अल्लाह को। हालांकि आपको पता है कि हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं इधर जन्नत है और इधर जहन्नुम है, बस एक पार्किंग लॉट है, राइट जाएंगे तो जन्नत है, लेफ्ट है तो जहन्नुम है। ऐसा नहीं है, जन्नत आसमानों पे है और जहन्नुम ज़मीन की गहराइयों में। अल्लाह ताला कहते हैं मादरा का कितन, अल्लाह ताला कहते हैं कि इन किताब अल फुज्जारी लफी जहीम यसलऊ नहा यौमद्दीन, यानी जहन्नमी जो है वो सिज्जीन में जाले जाएंगे, उनके किताब नामे सिज्जीन में फेंके जाएंगे। ये ज़मीन की गहराइयों के अंदर दफ्तर है जहाँ हमारी रूहें रखी जाती हैं, और अल्लाह माफ़ करे बुरे लोगों की, फाजिरों और काफिरों की रूहें सिज्जीन में जाती हैं और नेक लोगों की रूहें इलीजीन में जाती हैं। तो ये दो मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल है, दो मुख्तलिफ रवैये हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र डालें, हम सबको अपनी सोसाइटी में दो ही किस्म के लोग देखते हैं, एक नेकियों में भागने वाले और एक गुनाहों में भागने वाले। बीच में थोड़े से होते हैं वो जो कहते हैं कि मॉडरेटर किस्म के, मीडियम साइज, कुछ गुनाह भी तो कुछ नेकियां भी। अमूमन आप देखेंगे कि जो लोग गुनाहों की तरफ भागते हैं ना, वो क्या कहते हैं, टू मच है, नमाज 5 नमाजें अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ़ करेगा। पर्दा, और ज़रूरत नहीं, पर्दा तो दिल का है, पर्दा तो आंखों का। और रोज़ा, नहीं 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 हम रोज़ा नहीं रख सकते, इतने लंबे रोज़े हम नहीं रखे, हमने मरना है रोज़े रख के। वो हर चीज़ को अपनी मर्जी से मॉडरेट कर लेते हैं। आप उन्हें कहते हैं किताब पढ़ो, कहते हैं टू मच, 3 घंटे मैं नहीं बैठ सकती, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती, मेरी कमर में बड़ी दर्द है। फिल्म देखने के लिए 3 घंटे बैठ जाएंगे, कुरान की क्लास में बैठना मुश्किल लगेगा। जितना बंदा गुनाहों में आगे बढ़ता है ना, उतना उसको नेकियां करनी मुश्किल लगती हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे दोनों काम कर रहे हैं, उसको भी समझ लें आप। अब देखिए कि कोई एसी भी लगा दे और खिड़कियां भी खोल दे, क्या वो कमरा कभी ठंडा होगा? बाहर से लू के भभोके आ रहे हैं और अंदर एसी चल रहा है। हीट भी खोल दे कोई और बाहर बर्फानी हवा चल रही है और विंडोज भी खोल दे, कभी वो कमरा गर्म होगा? इम्पॉसिबल है ना। एक हाथ में बर्फ वाला पानी पीना चला गया और दूसरी तरफ उबलता हुआ हॉट चॉकलेट पी ले, तबाही है ना। 101 मिसालें मौजूद हैं कि जब गर्म ठंडे को जमा करेंगे तो खराबी होगी। तो जिंदगी में ये सोच लेना कि कुछ नेकियां भी तो कर रहे हैं और कुछ गुनाह भी कर लें, वो आपस में डिलीट के बटन दब रहे हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट, ये कुछ सारा दिन करते रहते हैं। सबसे ज्यादा सिक्योर वो बंदा है कि जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी दौड़ जन्नत के रास्ते पे लगा दे। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को सोचें, हर एक के होंगे, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी मिसालें अक्सर ही रहती हैं क्योंकि पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है तो लोग अपनी मिसालें देते हैं और हम आंखों से भी देखते हैं। लेकिन आप ख़ुद भी बताएं, क्या आपको अपने इर्द गिर्द दोस्तों में, ख़ानदान में कोई ऐसे दोस्त, बहनें या भाई दिखते हैं कि पहले बिल्कुल एक एज पे थे और अब दूसरे पे आ गए? हम सब अपने ऊपर गौर करें, बिल्कुल दर्द मंदी और इसलाह की खातिर गाऊंगी। अगर अभी तक आप कुरान पाक को अपनी जुबान में नहीं समझ सकी, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ पूरे यकीन के साथ, बगैर आप में से किसी से इम्प्रेस हुए, चाहे आप दौलत में खेल रही हैं, आप लैंड क्रूजर से उतरी हैं, आपका कई कनाल का घर है, आपके घर में, आपकी लवाड्रो में, कोई वार्डरोब्स पे, कोई बुटीक्स के जोड़े हैं, डिजाइनर्स क्लॉथ, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप खुश नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है और आपने असल ज़िंदगी का मज़ा चखा ही नहीं है। जैसे फीकी चाय पीने वालों को भी एक वक्त आता है कि चाय फीकी भी अच्छी लगती है ना, लेकिन जो मीठी पीते हैं वो कहते हैं छोड़े, हमने गर्म पानी ज़रूर पीना है। हम नहीं पीते जी, फीकी चाय नहीं पी जाती ना। यकीन करें, इस किताब से ताल्लुक़ जुड़े बगैर ज़िंदगी फीकी चाय जितनी कड़वी है। कड़वी ज़िंदगियाँ तल्ख हुई हुई हैं, सब कुछ आज इंसानों के पास सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। औलाद है लेकिन औलाद बात नहीं मानती, माल है लेकिन माल से नहीं आता, खाने तरह तरह के घर में पड़े खा ही नहीं सकते, और सब कुछ भी है खुशी नहीं है। खुशी का है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद में दिलों को सुकून है। तो इस पे हम बात को पूरा करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।